जल स्थिर हो गया, प्रतिबिंब फिर सामान्य, दुबला चेहरा, सूजी हुई आंख, फटी हुई त्वचा। कोई और नहीं, अर्जुन। कुएं की जगत ठंडी थी, पत्थर में दिन भर की धूप की बची हुई गर्मी अब उतर चुकी थी, हवा में मिट्टी और पसीने की गंध थी। आंगन लगभग खाली था, दूर अभ्यास स्थल से लकड़ी के डंडों के टकराने की आवाजें आ रही थीं, धप ठाक, फिर से किसी आचार्य की कठोर आवाज गूंज रही थी। वो चुपचाप बैठा रहा, सांस धीरे, गणना करते हुए, एक दो तीन। शरीर कांप रहा था, थकान से नहीं, कमजोरी से। इस देह में मांसपेशियां थीं पर उनमें संकल्प नहीं था, नाड़ियां थीं पर उनमें प्रवाह नहीं था। उसने हथेली उठाकर देखा, पतली उंगलियां, नाखूनों में मिट्टी भरी हुई। अयोग्य, किसी ने उसे कहा था, वो शब्द भीतर घूम गया। अयोग्य, उसने आंखें बंद की, भीतर उतरने की कोशिश की। पहले अंधकार, फिर टूटी रेखाएं, प्राणपथ ऐसे फैले थे जैसे किसी ने जलती छड़ी से उन्हें जला दिया हो। प्राकृतिक प्रवाह रुक चुका था, इस शरीर ने कभी साधना का सही प्रारंभ नहीं किया था, शायद प्रयास किया था पर असफल रहा। और अब उसमें वो था, उसने श्वास को धीरे धीरे नीचे उतारा। नाक से भीतर, गला, छाती, फेफड़े आधे भरकर रुक गए। उसने जोर दिया, दर्द उठा, सीने में खिंचाव, पर उसने श्वास रोकी नहीं। धीरे धीरे उसे नीचे धकेला, मणिपुर तक, वहां शून्य था, सूखा, पर उस शून्य के बगल में, मूलाधार के पास, वो बाल सा पतला मार्ग, काली बूंद स्थिर थी, वो उस बिंदु को छूना चाहता था। पर जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, झटका, रीढ़ में बिजली सी दौड़ी, उसकी आंखें खुल गईं, शरीर आगे झुका, सांस टूट गई। इतना दुर्बल, उसने मन में कहा, ये शरीर सीधा बलपूर्वक साधना नहीं सह सकता। पुराने समय में वह बैठता था और प्राण स्वयं प्रवाहित होते थे, यहां उसे विनती करनी पड़ रही थी। दूर से शोर कम होने लगा, अभ्यास समाप्त हो रहा था। यदि कोई उसे यहां ध्यान में बैठा देख लेता तो उपहास बनता या फिर दंड। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, पैरों में कंपन, जगत पकड़कर खड़ा हुआ। रात उतर रही थी, आकाश बैंगनी होने लगा था। गुरुकुल के पीछे की ओर एक संकरा मार्ग था जहां लकड़ियां रखी जाती थीं, अंधेरा जल्दी घिरता था वहां। वो चल पड़ा, हर कदम भारी, एड़ी मिट्टी में धंसती, घुटनों में जकड़न। दो शिष्य सामने से आए, उसे देखते ही हंसे, अरे जीवित है, आज ज्यादा नहीं पिटा क्या? वह रुका नहीं, न देखा, बस चलता रहा। उनकी हंसी पीछे छूट गई। पीछे का आंगन छोटा था, लकड़ी के गट्ठर, सूखी घास, टूटा हुआ रथ का पहिया। अंधेरा यहां घना था, दीपक की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वह लकड़ियों के सहारे बैठ गया, पीठ में दर्द उठा, पर यहां कोई नहीं था। उसने फिर आंखें बंद की, इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगा। श्वास भीतर, धीरे, बहुत धीरे, फेफड़ों को पूरा भरने की कोशिश नहीं, बस जितना सहज हो, फिर छोड़ना, फिर भरना, तीन बार, पांच बार, दस बार। धीरे धीरे हृदय की धड़कन स्थिर हुई। अब उसने श्वास को नाड़ी में धकेलने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखने लगा जैसे कोई नदी सूख चुकी हो पर तल अब भी मौजूद हो। वह नाड़ियों के किनारों को महसूस कर रहा था, जहां दरारें थीं, जहां जलन थी। और फिर बहुत सावधानी से उसने श्वास को मूलाधार के पास रोका,
सीधा धकेला नहीं, बस रोका वहां, एक क्षण, दो क्षण।
दर्द नहीं आया, केवल हल्की गर्मी, काली बूंद ने प्रतिक्रिया दी, सूक्ष्म, पर इस बार झटका नहीं। उसने श्वास छोड़ी, फिर दोहराया, फिर। समय बीत रहा था, आकाश गहरा हो चुका था, दूर कहीं शंख बजा, रात्रि भोजन का संकेत।
उसे जाना चाहिए था, पर उसने आंखें नहीं खोली। अब उस बाल मार्ग में हल्की धड़कन थी,
बहुत हल्की पर स्थिर। उसने तीसरी बार श्वास रोकी,
और इस बार उसे स्पष्ट महसूस हुआ, उस शरीर के मूलाधार के पास, जली हुई नाड़ियों के किनारे, एक अत्यंत पतली नई रेखा बनने लगी थी,
जैसे राख में कोई नाखून से खींच रहा हो, धीरे धीरे।
अचानक पीछे कदमों की आहट, किसी के रुकने की आवाज।
तू यहां क्या कर रहा है? एक स्त्री स्वर, शांत पर पैना। उसकी आंखें खुली, अंधेरा अब घना था। सामने लकड़ियों के ढेर के पार एक आकृति खड़ी थी।
दीपक की हल्की रोशनी पीछे से आ रही थी, इसलिए चेहरा छाया में था, पर उसकी देह रेखा स्पष्ट थी, सुंदर, सीधी, संतुलित, निश्चल।
वो खड़ी नहीं थी, वो देख रही थी। तू यहां क्या कर रहा है? वही स्वर फिर आया,
न ऊंचा, न क्रोधित, बस सीधा। उसने कुछ क्षण उसे देखा,
फिर सामान्य स्वर में कहा, बैठा हूं, हल्की खामोशी। वो एक कदम आगे बढ़ी, अब चेहरा आधा रोशनी में आया, उम्र लगभग 19-20, गहरा सफेद रंग पर दीपक की लौ की झिलमिल, बाल कसकर पीछे बंधे, आंखें स्थिर,
गले में रुद्राक्ष की छोटी माला, वस्त्र साधारण शिष्या जैसे नहीं थे, कमर पर पतली चांदी की करधनी, पैरों में घुघरू नहीं पर टखनों पर हल्की धातु की पत्तियां।
रात्रि भोजन का शंख बज चुका है, उसने कहा, या तूने तय कर लिया है कि आज भी उपवास करेगा?
उसने उत्तर देने से पहले श्वास को सामान्य किया। मूलाधार के पास की गर्मी अभी भी हल्की धड़क रही थी। वह उसे छिपाना चाहता था।
भूख नहीं है, उसने कहा। वह और पास आई। अब वह उससे दो हाथ की दूरी पर थी।
उसकी दृष्टि नीचे नहीं, सीधे उसकी आंखों में थी। झूठ बोलते समय पलकें ज्यादा झपकती हैं, उसने कहा। तेरी नहीं झपक रही।
वह चुप रहा और उसने धीमे जोड़ा, तेरी नाड़ी अभी अभी हिली है।
उसके भीतर हल्का सा झटका उठा। ये शिष्या कौन है? साधारण प्रशिक्षु नाड़ियों का कंपन नहीं देख सकता।
तू सुन भी रहा है? उसने पूछा। सुन रहा हूँ, उसने शांत स्वर में कहा।
तो जवाब दे, तूने अभी क्या किया? सांस ली। उसकी आंखें क्षण भर सिकुड़ी।
मजाक मत कर। मजाक नहीं, उसने कहा। सांस ली, छोड़ी, फिर ली।
वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब वह झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, इतनी निकट कि वह उसकी त्वचा पर चंदन की हल्की गंध महसूस कर सकता था। 3 दिन पहले तक वह ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तू उन लोगों के सामने 2 चाबुक भी सह नहीं पाता था, और आज 50 प्रहार झेल कर भी सीधा खड़ा है।
गिरा तो था, उसने सहज कहा। गिरा, उसने सिर हिलाया, पर टूटा नहीं। खामोशी। उसने भीतर झांका, मूलाधार के पास की रेखा अब स्थिर थी। उसने श्वास साधारण रखी। नाम क्या है तेरा? उसने पूछा। अर्जुन, उसने कहा। वो मुस्कुराया नहीं, केवल देखा। गुरुकुल के लेख में यही नाम है, उसने कहा। वो सीधी हुई, कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तूने अभी मूलाधार के पास कुछ छेड़ा है। उसका शरीर क्षणभर के लिए तन गया, पर चेहरे पर भाव नहीं आया। तुझे कैसे पता? क्योंकि, उसने अपनी छाती पर उंगली रखी, मेरी नाड़ी प्रतिक्रिया देती है। वह रुकी, और अभी, उसने प्रतिक्रिया दी। हवा में सूखी घास की गंध भुली हुई थी। दूर से बर्तनों के टकराने की आवाज आ रही थी। वह हल्का सा हंसी, पर हंसी में खिलंदड़ापन नहीं था। ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, वह मुड़ी जैसे जाने वाली हो, फिर रुकी, पीछे देखे बिना बोली, अगर तू फिर से वही करेगा तो सावधान रह। क्यों? उसने पूछा। अब वो उसकी ओर मुड़ी, क्योंकि इस गुरुकुल में हर कोई अंधा नहीं है। उसने एक कदम और पास आकर फुसफुसाया, और कुछ लोग प्रतीक्षा में हैं। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमकी, फिर वो मुड़ी और धीरे धीरे चल दी। उसके कदमों की आहट मिट्टी में समा गई, वो वहीं बैठा रहा। भीतर काली बूंद स्थिर थी, नई बनी पतली रेखा अभी भी कांप रही थी। और अब एक नया प्रश्न, ये स्त्री शत्रु है या अवसर? दूर भोजनालय से किसी ने पुकारा, अर्जुन अगर खाना है तो आ जा। उसने आंखें बंद की, एक बार और श्वास भीतर ली। मूलाधार के पास की हल्की गर्मी इस बार पहले से स्पष्ट थी। उसने आंखें खोली, और अंधेरे में जहां वह खड़ी थी कुछ क्षण पहले, उसे लगा जैसे छाया अभी भी उसे देख रही हो। उसने दृष्टि हटाई, श्वास सामान्य, देह अभी भी कांप रही थी, पर भीतर हल्की स्थिरता थी। वह लकड़ियों का सहारा लेकर उठा, पीठ की त्वचा खींची, घाव फिर जल उठे, पर इस बार दर्द उसके केंद्र तक नहीं पहुंचा। भोजनशाला की ओर जाने वाला मार्ग पत्थरों से पटा था, दोनों ओर नीम के पेड़। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, दियों की लौ हवा में कांप रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाजें स्पष्ट होने लगी, हंसी, बर्तनों की खनकनाहट, भाप में पकते चावल की गंध। भोजनशाला लंबी खुली संरचना थी, छत लकड़ी की, खंभे पत्थर के, भीतर पंक्तियों में बैठे शिष्य, बीच में बड़े मृदभांड, दाल, चावल, सब्जी। जैसे ही वह भीतर प्रवेश किया, कुछ सिर उसकी ओर मुड़े, फिर कुछ और, फिर फुसफुसाहट, आ गया, अभी जिंदा है। देख पीठ पर निशान, वह बिना रुके अंत की ओर चला, जहां प्रायः कमजोर या दंडित शिष्यों को बैठाया जाता था। पर आज उसके कदमों की चाल अलग थी, धीमी पर स्थिर। वह बैठ गया, सामने पत्तल रखी गई। एक शिष्य ने दाल डालते हुए कहा, आज ज्यादा मत खा लेना। कुछ हंसी, उसने पत्तल की ओर देखा, चावल सादे, दाल पतली, सब्जी में नमक कम। उसने पहला कौर उठाया, हाथ हल्का कांपा, कमजोरी अभी भी थी। पर भीतर मूलाधार के पास की पतली रेखा अब शांत थी, वह खा रहा था, पर ध्यान भीतर था। अचानक उसके सामने कोई बैठ गया, उसने ऊपर देखा, वही स्त्री। अब रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट था, आंखें गहरी, उनमें थकान नहीं बल्कि निरीक्षण था। उसने बिना कुछ कहे अपनी पत्तल रखी, दोनों के बीच कुछ क्षण मौन, फिर उसने सामान्य स्वर में पूछा, दर्द हो रहा है? हाँ, उसने कहा। अच्छा है, उसने उत्तर दिया। उसने भौहें हल्की उठाई, अच्छा, दर्द बताता है कि देह अभी हार नहीं मानी। वह चावल का कौर तोड़ रही थी, उसकी उंगलियां साफ संतुलित। तू आज अभ्यास स्थल पर अलग था, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। कैसा? उसने पूछा, जैसे कोई देख रहा हो और गणना कर रहा हो। उसने कौर मुंह में रखा, चबाया, तू बहुत देखती है, उसने कहा, और तू बहुत छिपाता है। पास बैठे 2 शिष्य अब स्पष्ट रूप से उनकी ओर देख रहे थे। एक ने धीरे से दूसरे से कहा, माधवी उसके साथ क्यों बैठी है? माधवी, तो ये नाम है। माधवी ने उनकी ओर देखा नहीं, पर आवाज सुन ली। कल से तुझे फिर दंड मिलेगा, उसने कहा, क्योंकि आज तूने झुकने से इनकार किया। झुकना चाहिए था, उसने पूछा। वह पहली बार हल्का सा मुस्कराई। गुरुकुल में जीवित रहने के लिए, हाँ। और जीने के लिए, उसने पूछा। वह रुकी, उसकी दृष्टि उससे मिली। जीने के लिए, उसने कहा, या तो शक्ति चाहिए या संरक्षण। और तुझे क्या है, उसने पूछा। वह चावल का कौर उठाकर मुंह तक ले गई, दोनों में से थोड़ा थोड़ा। पास से आवाज आई, माधवी। दोनों ने उधर देखा। भोजनशाला के प्रवेश पर वही चाबुक वाला युवक खड़ा था। उसकी दृष्टि सीधे उन पर। यहां क्या कर रही हो, उसने पूछा। माधवी ने सामान्य स्वर में कहा, भोजन। इसके साथ युवक की भौहतनी। पंक्ति में जहां स्थान मिला, युवक भीतर आया, उनके सामने खड़ा हो गया। अर्जुन, उसने कहा, कल सूर्योदय से पहले अखाड़े में मिलना, विशेष अभ्यास होगा। कुछ शिष्य हंसे। अर्जुन ने ऊपर देखा। ठीक, उसने कहा। युवक झुका, धीमे स्वर में बोला, आज आंखों में कुछ और था, संभाल कर रखना, यहां बहुत लोग उसे बुझाने में आनंद लेते हैं। वो सीधा हुआ, मुड़ा, चला गया। भोजनशाला में शोर फिर सामान्य होने लगा। माधवी ने धीरे से कहा, तूने उसे क्रोधित किया है, उसे कारण चाहिए था, उसने उत्तर दिया। और तुझे, मुझे, उसने पत्तल से अंतिम कौर उठाया, मुझे कारण नहीं चाहिए। माधवी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, यदि तू सच में अपने टूटे हुए मूलाधार का मार्ग बना रहा है तो अकेला मत कर। उसने उसकी ओर देखा। क्यों? वह झुकी, इतनी कि उसके शब्द केवल वही सुन सके। क्योंकि किसी ने पहले भी ऐसा किया था, उसकी धड़कन एक क्षण को रुकी। और, उसने पूछा। माधवी ने सीधा होकर पानी पिया, फिर बिना उसकी ओर देखे कहा, वह जीवित नहीं रहा। वह उठी, पत्तल उठाई, जाते जाते एक क्षण को रुकी। सूर्योदय से पहले मैं भी अखाड़े में रहूंगी, वह चली गई। भोजनशाला का शोर अब दूर सा लग रहा था। उसने अपनी हथेली देखी, उंगलियां अभी भी कांप रही थीं, पर भीतर मूलाधार के पास की वह पतली रेखा पहले से थोड़ी मोटी हो चुकी थी। उसने हथेली मुट्ठी में बांधी। हल्की गर्मी भीतर स्थिर थी। भोजनशाला लगभग खाली हो चुकी थी। मिट्टी के दीप बुझाए जा रहे थे। रात गहरी थी, पर वह नहीं सोया। वह शिष्यों के शयन कक्ष की ओर गया, पर भीतर नहीं गया। दीवार के सहारे बैठ गया, आंखें बंद नहीं की, सिर्फ प्रतीक्षा। आकाश काला से नीला होने लगा, पक्षियों की पहली हल्की आवाज, और फिर शंख। सूर्योदय से पहले का संकेत। अखाड़ा गुरुकुल के पूर्वी छोर पर था। गोल मिट्टी का विस्तृत मैदान, चारों ओर लकड़ी के खंभे, बीच में गीली मिट्टी की परत ताकि गिरने पर हड्डी न टूटे। वो पहुंचा और रुका। वहां पहले से लोग थे, सिर्फ वह चाबुक वाला युवक नहीं। और माधवी, वह खंभे के पास खड़ी थी, बाहें सीधी, दृष्टि स्थिर। युवक ने उसे आते देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हमारा पराक्रमी अर्जुन। कुछ शिष्य हंसे। आंडिस्को, उस युवक का नाम था, वीरेंद्र। लंबा, चौड़े कंधे, बाहों पर उभरी नसें, कमर पर बधी लकड़ी की अभ्यास चाकू, पर सभी जानते थे वह उसे खेल की तरह नहीं चलाता। मिट्टी गीली थी, सुबह की नमी अब भी सतह पर थी। अर्जुन बिना कुछ कहे अखाड़े के बीच पहुंचा। आज विशेष अभ्यास है, वीरेंद्र ने कहा, सहनशक्ति और प्रतिक्रिया। उसने लकड़ी का चाकू निकाला, ब्लेड कुंद था, पर प्रहार असली होते थे। रक्षा मत करना, उसने धीरे से कहा, सीखने के लिए पहले टूटना पड़ता है। कुछ शिष्य हंसे। माधवी चुप थी, उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। आरंभ। अखाड़े पर निगरानी रख रहे आचार्य की कठोर गूंजती हुई आवाज पूरे प्रांगण में फैल गई। पहला प्रहार बिजली की तरह, अर्जुन ने देखने की कोशिश की, पर शरीर धीमा था, चाकू उसकी पसलियों के नीचे धंसा, धप, हवा निकल गई। दूसरा वार कंधे पर, तीसरा जांघ पर। वो पीछे डगमगाया, मिट्टी उछली, भीतर मूलाधार की पतली रेखा हल्की कांपी, पर उसने उसे छुआ नहीं। वीरेंद्र तेज था, प्रशिक्षित, हर प्रहार गणना किया हुआ। चौथा वार पीठ पर, घुटने मिट्टी में धंस गए। हंसी, यही है असली अर्जुन, किसी ने कहा। पांचवां वार चेहरे के पास, ब्लेड कान छूता हुआ निकला, खून की पतली रेखा। अर्जुन गिर पड़ा, मिट्टी ठंडी थी, सांस टूट रही थी। उठ, वीरेंद्र ने कहा, अभी तो शुरुआत है। उसने बाल पकड़कर उसे घसीटा, घुटनों के निशान मिट्टी पर बनते गए। माधवी का हाथ खंभे पर कस गया। छठा वार पेट पर, इस बार दर्द गहरा गया। अर्जुन की दृष्टि धुंधली होने लगी, भीतर मूलाधार के पास की काली बूंद स्थिर थी। नई बनी पतली रेखा कांप रही थी। वह जानता था, यदि उसने उसे खुला छोड़ दिया तो वह छिप नहीं पाएगा। सातवां वार, आठवां, एक लकड़ी की आवाज पसलियों के पास, टिक, कुछ टूटने की सूखी ध्वनि। अर्जुन आधा मुड़ गया, भीतर कुछ हिल गया। बस करो, किसी ने धीमे कहा, पर वीरेंद्र रुका नहीं। पराक्रमी था ना, उसने झुककर कहा, आज भी खड़ा रहेगा। उसने चाकू उठाया, इस बार सीधे कंधे के जोड़ पर मारने के लिए। और उसी क्षण अर्जुन की आंखें खुली, गहरी, स्थिर, दर्द से नहीं, शून्य से। भीतर उसने श्वास ली, गहरी नहीं, बस उतनी जितनी पर्याप्त हो। और बहुत सावधानी से मूलाधार के पास की पतली रेखा को छुआ। काली बूंद हिली, इस बार झटका नहीं, एक गर्म भारी प्रवाह उठा, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया, न त्वचा तक, न नाड़ियों में फैलने दिया। उसने उसे मांसपेशियों के भीतर रोका, जैसे राख के भीतर आग दबाई जाती है। उसकी जांघ की मांसपेशियां कस गईं, पीठ के स्नायु तने, पर बाहर से वो अब भी टूटा हुआ दिख रहा था। वीरेंद्र ने वार किया और उसी क्षण अर्जुन ने करवट बदली, पहली बार प्रहार खाली गया। क्षण भर का अंतर, बस उतना ही चाहिए था। अर्जुन की मुट्ठी मिट्टी में धंसी, भीतर छुपी काली अग्नि ने मांसपेशियों को एक झटका दिया। उसने पूरा बल एक ही बिंदु में समेटा और ऊपर की ओर उठते हुए उसकी कोहनी सीधे वीरेंद्र की पसलियों के नीचे लगी। धड़ाम, आवाज अलग थी, साधारण मांस पर प्रहार जैसी नहीं, कुछ भीतर धंसा। वीरेंद्र की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गईं। अर्जुन रुका नहीं, वो अभी भी आधा घुटनों पर था। दूसरा वार मुट्ठी से सीधे कॉलबोन पर, टिक, हड्डी में दरार। तीसरा कंधे के जोड़ पर धक्का। वीरेंद्र पीछे गिरा, मिट्टी उछली। कुछ क्षण के लिए अखाड़ा बिल्कुल शांत हो गया, फिर वीरेंद्र का शरीर तड़पा, उसके मुंह से हवा निकली, आवाज नहीं। उसकी बांह अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, दो शायद तीन हड्डियां टूटी हुई। अर्जुन खड़ा होने की कोशिश में डगमगाया, भीतर की काली अग्नि अभी भी मांसपेशियों में जल रही थी, पर उसने उसे फैलने नहीं दिया, नाड़ी तक नहीं, त्वचा तक नहीं। उसकी आंखें सामान्य थीं, कोई लौ नहीं, कोई आभा नहीं, बस थकान। और फिर अचानक वह प्रवाह उल्टा पड़ा, कमजोर शरीर इतना बल सह नहीं पाया, सीने में दर्द उठा, सांस टूटी, दृष्टि घूम गई, वो खड़ा नहीं रह सका, मिट्टी में गिर पड़ा, अखाड़े में सन्नाटा, फिर शोर। क्या हुआ, ये कैसे? वीरेंद्र की हड्डी, माधवी दौड़कर आए, उसने पहले वीरेंद्र की नाड़ी देखी, धड़क रही थी, फिर अर्जुन की ओर मुड़ी, उसका शरीर कांप रहा था, भीतर की अग्नि अब बुझ रही थी, पर मूलाधार के पास वो पतली रेखा अब पहले से मोटी थी, स्थिर। माधवी ने बहुत धीमे फुसफुसाया, तूने उसे हरा दिया। आचार्य आगे बढ़ रहे थे, शिष्य घेर रहे थे, पर उस क्षण अर्जुन कुछ नहीं सुन रहा था, उसके भीतर केवल एक अनुभूति थी, दर्द, और उसके पीछे गहरी अंधेरी शक्ति जो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, और वह अंधकार उसे स्वीकार कर चुका था। फिर सब काला हो गया, अंडस को अखाड़े की मिट्टी अब भी उलझी हुई थी, दोनों देहें स्थिर पड़ी थीं, अर्जुन और वीरेंद्र। कुछ क्षण पहले तक जहां हंसी थी, वहां अब सन्नाटा था। ये कैसे हुआ? वीरेंद्र गिर गया, उसकी बांह देखो, फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। माधवी घुटनों के बल बैठी थी, उसकी उंगलियां पहले वीरेंद्र की कलाई पर गईं, नाड़ी चल रही थी तेज, अस्त व्यस्त। फिर उसने अर्जुन की नाड़ी जांची, धीमी पर गहरी, दोनों को चिकित्सालय ले जाओ, एक आचार्य की कठोर आवाज आए। चार शिष्यों ने उन्हें उठाया, मिट्टी उनके घावों से चिपकी हुई थी, सुबह की धूप अब अखाड़े के किनारों पर उतर रही थी, पर किसी को उसका भान नहीं था। आज अर्जुन ने वीरेंद्र को पराजित किया था। गुरुकुल का चिकित्सक कक्ष मुख्य भवन के पीछे था, पत्थर की दीवारें, भीतर हल्की औषधियों की गंध, छत से लटके सूखे जड़ी बूटियों के गुच्छे, एक ओर मिट्टी के पात्र, दूसरी ओर लकड़ी के पलंग। वीरेंद्र को पहले लिटाया गया, उसकी बांह अस्वाभाविक कोण पर थी, पसलियों पर सूजन, दो हड्डियां तो निश्चित टूटी हैं, वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन को दूसरे पलंग पर रखा गया, उसकी पीठ पर चाबुक और प्रहारों के पुराने निशान थे, पसलियों के नीचे नीला पड़ता मांस, होंठ फटा हुआ, पर भीतर मूलाधार के पास की वह रेखा शांत थी, स्थिर, मानो कुछ हुआ ही न हो। धीरे धीरे अंधकार में हल्की रोशनी घुलने लगी, अर्जुन की चेतना लौटी, पहले धुंधला, दीवारें जैसे पानी के भीतर दिखती हों, फिर ध्वनियां, कहीं पास में किसी के दांतों से पल काटने की हल्की आवाज। उसने पलकें झपकाई, दृष्टि साफ होने लगी, सबसे पहली स्पष्ट चीज माधवी, वह उसके बगल में एक लकड़ी की चौकी पर बैठी थी, हाथ में फल, शायद सेब जैसा लाल जंगली फल, वह शांत भाव से उसे खा रही थी। बाल आज खुले नहीं थे, पर कुछ लंटे ढीली होकर गाल के पास आ गई थीं। जब उसने देखा कि उसकी आंखें खुल गई हैं, उसने बिना चौंके बस उसे देखा, जाग गया, उसने सामान्य स्वर में पूछा। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, गला सूखा था। माधवी ने फल का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर बढ़ाया, खाएगा? वह कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया, हाँ। उसने फल उसके हाथ में रख दिया, वैद्य ने कहा है पसलियों में दरार है, उसने बताया, पर जान को खतरा नहीं। वीरेंद्र, उसकी आवाज धीमी थी, जिंदा है, माधवी ने कहा, पर कुछ समय तक चाबुक नहीं चला पाएगा। उसकी आंखों में हल्की अनकही मुस्कान थी, कमरे में कुछ पल शांति रही। अर्जुन धीरे धीरे पल चबा रहा था। शरीर भारी था, पर भीतर वो काली अग्नि बुझी नहीं थी, बस गहराई में चली गई थी। माधवी ने पल का अंतिम कौर खाया, हाथ झाड़े, फिर खड़ी हो गई। चलो, उसने सहज स्वर में कहा, अब तू जाग गया है तो मैं चलती हूँ। वो मुड़ी, अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा, कुछ भीतर हिला। न मूलाधार, न अग्नि, कुछ और, माधवी, उसने पुकारा। वो रुकी, मुड़ी नहीं, बस ठिठक गई। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, उसने पूछा। कमरे में हल्की हवा चली, जड़ी बूटियों की गंध हिली, कुछ क्षण मौन रहा। फिर वो बिना मुड़े दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर उसने क्षण भर ठहर कर जोड़ा, और उस वक्त शायद मुझे भी। फिर वो बाहर चली गई, दरवाजा आधा खुला रह गया। अर्जुन छत की ओर देखता रहा, प्रश्न बढ़ गए थे, माधवी कौन है? उसे उसकी नाड़ी की गति कैसे महसूस होती है, और क्या वो सच में सहायता कर रही है या किसी बड़ी प्रतीक्षा का हिस्सा है? उसने धीरे से आंखें बंद की, भीतर उतरने की कोशिश की। मूलाधार के पास वह पतली रेखा अब स्पष्ट थी, पहले से मोटी स्थिर, और काली बूंद पहले से अधिक भारी। आज उसने पहली बार उस अग्नि को शरीर में छुपाकर प्रयोग किया था, पर अगली बार क्या वह उसे उतनी ही आसानी से बांध पाएगा? बाहर गलियारे में कदमों की आहट गूंजी, किसी ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य उसे देखना चाहते हैं। अर्जुन की आंखें फिर खुलीं।